ప్రియ సత్యమా అప్రమత్తా శుచిస్నిగ్ధా పతిం త్వపతితం భజే. సాధు స్త్రీ కో లాల్చి నహీ హోనా చాహియే, అభి తో ఉసే సభీ పరిస్థితియో మే సంతుష్ట రహనా చాహియే, ఉసే గృహస్థీ కే కామ కాజ మే అత్యంత నిపుణ హోనా చాహియే ఔర్ ధార్మిక నియమో సే పూర్ణతయా అవగత హోనా చాహియే, ఉసే మధుర ఔర్ సత్య భాషణ కరనా చాహియే, ఉసే అత్యంత సతర్క ఔర్ సదైవ శుద్ధ ఔర్ పవిత్ర రహనా చాహియే. इस प्रकार एक साधु स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो. या पति मरे भावे ने भजे श्री रेव तत्पर हरि आत्मना हरेर लोके पत्या श्री रेव मोदते. जो स्त्री लक्ष्मी जी के पति चिन्हों पर चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है वो अपने पति के साथ निश्चित रूप से भगवत धाम जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुख पूर्वक रहती है. तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, साधु स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है. ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र शत सम ब्रह्म से विमानम. विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं जो लक्ष्मी जी के ही समान हैं. स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए. मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए. तब पति तथा पत्नी दोनों इतने विश्वस्त और प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भगवत धाम वापस जा सकेंगे. तो अभी हमने चर्चा की है सामान्य जो कर्म है चारों वर्णों के और चारों वर्णों के अलग अलग कर्म हैं, इनकी चर्चा की है. अब इसमें भगवान जो कह रहे हैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है, पार्थ कर्तव्यानी थी मे पार्थ है. तो पार्थ का मतलब क्या है आप जानते हैं, प्रथा पुत्र. और प्रथा कौन है, कुंती देवी, कुंती देवी के पुत्र. तो भगवान अर्जुन को जो है ये उत्तम मत जो बतला रहे हैं वो क्यों बतला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कुंती देवी के पुत्र हैं. कुंती देवी भगवान की बुआ हैं, भगवान कुंती देवी के भतीजे हैं और बहुत प्यार करते हैं. कुंती से भगवान बहुत प्यार करते हैं, कुंती महारानी भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत समर्पित हैं कुंती महारानी. तो चूंकि बहुत प्रिय बुआ हैं भगवान की कुंती देवी और उनके पुत्र हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को ये निश्चित मत बतला रहे हैं. अब भगवान क्या कह रहे हैं, निश्चितम मतम उत्तमम मे मतम. भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा मत है? तो भगवान का मत है ना. तो ये भगवत गीता क्या है, ये भगवान का मत है, भगवत मत. भगवान ये भगवत गीता को आप कह सकते हैं भगवान का मत है ना, भगवान का मत, भगवत मत तत्पत ये होना चाहिए कि भगवान का जो मत है वही हमारा पत है. लेकिन आजकल क्या नारा चलता है, यत मत तत्पत, जो भी मत हो जिसका भी जिसका जो मत हो उसका वही रास्ता है ना. तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नरक में जाने का बिल्कुल चौड़ा लंबा चौड़ा रास्ता नरक में जाने का है ये यत मत तत्पत. जो भगवान का मत है ये जो है ना आपको सुरक्षा की तरफ ले जाता है, आपको सुरक्षित करता है. और जो आपका मत है ये नरक में ले जाएगा, है कि नहीं. इसलिए बहुत लोग जो ना बड़े गौरव के साथ कहते हैं ये मेरा मत है, मेरे मत से ऐसा होना चाहिए, मेरे मत से. और लोग बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं तो अपना अपना मत बताइए, आपके मत के अनुसार क्या है, हमारे मत के अनुसार क्या है ना. तो ये जो ना बड़ी प्रसन्नता से जो ना लोग अपने अपने सिद्धांत बनाते हैं, अपने अपने मत बताते हैं, हमारा मत यह है, तुम्हारा मत यह है, आपका मत क्या है, आपका मत क्या है कि नहीं. लेकिन इन सब मतों का कुछ भी लाभ नहीं है, जो भगवान का मत है वही उत्तम है. उत्तम का मतलब क्या है, जो उत्तम माने ऊपर, तम माने अंधकार, अंधकार से ऊपर है. और बाकी हमारा मत और आपका मत ये सब क्या है? तम। तम माने अंधकार। अंधकार अंधकार में, अंधकार में कुछ भी सोचते रहते हैं। आपके पास आंखें नहीं है ना, आपकी आंखें बंद हैं, आपकी आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके मत से कनॉट प्लेस जाने का रास्ता क्या है? तो जितने अंधे हैं सब अपने अपने मत से बताएंगे कि कनॉट प्लेस जाने का रास्ता क्या है। ये क्या है? कुछ फायदा नहीं बेवकूफ। आपको कुछ भी आपके पास दृष्टि तो है नहीं, और फिर भी अपना मत बताते हैं कि हमारे मत से ये रास्ता, हमारे मत से वो रास्ता, है ना। तो वो तम है, अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार मत रहो, ज्योति में जाओ। तो पहले प्रकाश प्राप्त करो और तब जो है ना आप रास्ता बताओ। तब आप रास्ता देखोगे, रास्ता समझोगे, तब आप रास्ता बताओगे। ये प्रकाश तो प्राप्त कर नहीं रहे हैं, अंधकार है। कलो नष्ट दृशामे, कलयुग ने लोगों की दृष्टि नष्ट कर दी, कलयुग ने अंधकार पैदा कर दिया है। तो अब किसी को भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तो अभी अपने अपने मत के अनुसार रास्ता बताते हैं। हमारे मत से ये रास्ता है, हमारे मत से वो रास्ता है। तो ये मत है ना, तो ये जो है ना इसका कोई जो है मूल्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी अपने शिष्य को बहुत डांटा। प्रभुपाद ने पूछा, कुछ बोर्ड में लिखा था, प्रभुपाद जी सवेरे सवेरे भ्रमण कर रहे थे, तो उन अपने शिष्यों के साथ में थे, तो किसी बोर्ड में कुछ शब्द लिखा हुआ था। तो प्रभुपाद ने पूछा इस शब्द का क्या मतलब है, तो जितने शिष्य थे वो सब चुप रहे। एक शिष्य बोला, प्रभुपाद मेरे मत से इसका ये अर्थ है। तो प्रभुपाद खड़े हो गए और फिर बहुत देर तक उसको डांटते रहे कि तुम्हारे मत से ऐसा है, तुम्हारे मत का क्या महत्व है, जो तुम्हारा मत, तुम्हारे विचार से, तुम्हारे विचार का क्या महत्व है। इस तरह से बहुत डांटते रहे। तो ये सब गलत है। आपको मत प्राप्त करना है शास्त्र। शास्त्र का क्या मत है, साधु और गुरु का मत क्या है, साथ साधु और आचार्य के मत के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का मत है, है ना। आजकल के वैज्ञानिक हैं, उनके भी जो है ना मत बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मत, आज के वैज्ञानिकों का मत कोई निश्चित नहीं है, भगवान का मत निश्चित है। भगवान कहते हैं निश्चितम मतम, ये मेरा मत निश्चित है और उत्तम है। उत्तम माने अंधकार से ऊपर है। आजकल के वैज्ञानिकों का मत भी निश्चित नहीं होता है और उसमें कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता है। जैसे कि उन्होंने मतलब अपना मत बताया, अपना सिद्धांत बताया कि भाई कैसे ये दुनिया बनी, तो क्या कहते हैं, हरि बोल। तो उनका क्या सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, मतलब एक बड़ा विस्फोट हुआ। हरि बोल। एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसी से सूर्य बन गए, चंद्रमा बन गए और ये पृथ्वी बन गई है। इस प्रकार से जो ना ये मूर्खता के मत अपने बनाते रहते हैं। एक बड़ा विस्फोट हुआ तो सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, पृथ्वी बन गई, है ना। और फिर हम मनुष्य जो है ना कैसे बने, बंदर से बने हैं। पहले बंदर थे, अब मनुष्य बन गए धीरे धीरे। बंदर, बंदर की पूंछ धीरे धीरे घटती गई, गायब हो गई और आदमी बन गया। ये मूर्खता के मत है कि नहीं। तो ये जो है ना इन लोगों के मतों का कोई मतलब नहीं है। शास्त्र के जो है ना हिसाब से कुछ नहीं देखना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, है ना। इस प्रकार के जो मत हैं वो, इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग हैं, दवाइयां बनाते हैं तो किसी रोग को दूर करने के लिए कोई दवाई बनाते हैं, उस दवाई से फिर दूसरे रोग पैदा होते हैं, है ना। इस शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं है। शास्त्रों में अगर कोई बात बताई कि भाई ये कल्याणकारी है, तो ये कल्याणकारी हमेशा रहेगी, आपको हमेशा उसका पालन करना है। जैसे भगवान का नाम कल्याणकारी है, तो हमेशा रहा, हमेशा है, हमेशा रहेगा, है कि नहीं। तो ये जो है ना शास्त्रों का मत है, भगवान का मत है। अब उत्तम, उत्तम शब्द का अर्थ जो है ना दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो तम माने अंधकार, उत्तम माने ऊपर, अंधकार से ऊपर है। और दूसरा अर्थ है उत्तम का, कैसे निकाला जाता है, उत माने ऊपर, उत्तर माने ज्यादा ऊपर, उत्तम माने सबसे ऊपर, सर्वोच्च, उत्तम का मतलब सर्वोच्च, तो जो भगवान का मत है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है कि नहीं, तो इस तरह से उत्तम का है। तो ये भगवान का जो उत्तम मत है वो हमको भगवान से प्राप्त होता है, और इस प्रकार से हम पूरा लाभ उठा लेते हैं अपने मनुष्य के जीवन का, और अपना टाइम खराब नहीं करते सोचने में, विचार करने में कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये कहता है, इसको कहते हैं अवरोह क्रम, अवरोह विधि कहलाते हैं। अवरोह विधि का मतलब ऊपर से हमें उत्तम मत प्राप्त हो गया और हमने उसको प्राप्त कर लिया, उसका पालन किया और अपना लाभ उठा लिया, तो ये अवरोह विधि कहलाती है। लेकिन आरोह विधि से क्या होता है कि वो विचार करते हैं ये ठीक हो सकता है, फिर उसका प्रयोग करेंगे, उसका परिणाम देखेंगे, हाँ अच्छा हाँ इतना ठीक है इतना ठीक नहीं है, तो फिर ये हो सकता है ठीक हो, फिर उसका प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, परिणाम प्राप्त करेंगे, हाँ अच्छा हाँ इसमें भी इतना ठीक हुआ इतना ठीक नहीं हुआ, तो इसमें कितना टाइम खराब होता है। उत्तम जो मत है वो प्राप्त करने के लिए आपको कितना टाइम खराब करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से टाइम खराब करना चाहता है कि उत्तम मत क्या है जानना चाहता है, तो उसको को कई जन्म लगाने पड़ेंगे। तो भगवान सातवें अध्याय में कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रबद्धे, कई जन्मों के अंत में वो जो है ना ज्ञानवान होता है, जान पाता है उत्तम मत, और जान पाता है मेरी शरण में आता है कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूँ सर्वस्व हूँ, है ना। इस तरह से भगवान जब अपना मत देते हैं तो फिर बिल्कुल कोई संदेह नहीं रहता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपना जीवन का जो है समय नष्ट नहीं करते हैं। तो ये विधि है, इसको कहते हैं आरोह विधि। अब भगवद्गीता की भूमिका में पेज नंबर 3 है, इसमें कुछ बातें हैं जो प्रभुपाद जी बताते हैं, हम इनको सुनेंगे। भगवद्गीता, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संस्करण जो गीता का है उन्होंने क्यों लिखा है। प्रभुपाद लिखते हैं, हाल ही में एक अमरीकी महिला ने मुझसे भगवद्गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवद्गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि केवल अमेरिका में ही नहीं अभी तो भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद्गीता की यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अपना मत डाल दिया। गीता में तो भगवान अपना मत बताते हैं, भगवद्गीता क्या है, कृष्ण का मत है और जो निश्चित है और उत्तम है, है ना। लेकिन अपना मत जो निश्चित भी नहीं है और अंधकार तम है, और तम नहीं है तम है, उसको घुसेड़ देते हैं भगवद्गीता में, अपना मत घुसेड़ देते हैं। तो कृष्ण ये भगवद्गीता यथारूप में क्या है कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण का मत ही जो है ना बताया है, अपना मत नहीं, कृष्ण का मत, इसलिए भगवद्गीता यथारूप। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने इसलिए लिखी है भगवद्गीता यथारूप क्योंकि जितनी भी गीताएं हैं प्रायः सब में कृष्ण के मत में अपने मत को जोड़ दिया, कृष्ण के मत को हटा करके भी अपना मत घुसेड़ दिया, भगवद्गीता के नाम पर अपना मत जो है ना वो दे रहे हैं लोगों को, और नाम है भगवद्गीता का, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि दूध के नाम पर कोई व्यक्ति चूने का पानी पिला दे किसी को, आप समझ रहे हैं, चूने का पानी भी सफेद होता है, दूध के नाम पर चूने का पानी जो ना कोई पिला दे, उसी प्रकार से गीता के नाम पर कृष्ण के मत को तो निकाल दिया है और भगवत गीता के नाम पर वो अपना मत जो है ना लोगों को दे रहे हैं और विनाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं लोगों के जीवन का, है ना। इसलिए भगवद्गीता यथारूप प्रभुपाद जी नाम दिया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भगवद्गीता का मर्म भगवद्गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है, हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है, अपने मत से नहीं आप औषधि ले सकते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। गीता के चतुर्थ अध्याय में एक से तीन तक श्लोक संख्या भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मन वे प्राह मनोरेक्षा कवे ब्रवीम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले लेह महता योगो नष्टा परंतपम स एवायम मया तेज योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोस्ति मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई, सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। यहाँ भगवान कहते हैं पार्थ कि तुम प्रथा के पुत्र हो, यानी जो बहुत बड़ी भक्त हैं कुंती महारानी उनके तुम पुत्र हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, है ना। भगवान कह रहे हैं इसका तात्पर्य है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहां पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अति हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, प्रत्यक्ष शिष्य हैं और घनिष्ठ मित्र हैं। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है क्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। आप पेज नंबर 5 में मैं पढ़ रहा हूँ। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया, इसका वर्णन 10 अध्याय में श्लोक संख्या 12-14 इस प्रकार हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तम ऋषिः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्मि सर्वम् एतन्द्रतम् मन्ये यन्मां वदसि केशव नैते भगवन् व्यक्तिम् विदुर देवान दानवम्। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद अस्थित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम यानी भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। जब ये कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वे पूर्ण सत्य मानते हैं। सर्वमेतत् कृतं मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतः भगवद गीता को भक्तिभाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के समान है, न ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। तो इस तरह से हमने समझा, भगवान का जो है जो मत है वो निश्चित है और उत्तम है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक देखिए, तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, ये मे मतम मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवम् श्रद्धावन्तो न सोयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे मत के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस मत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का मेरे मत का जो आदर करें, है नहीं? तो आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरा ये निश्चित मत है, उत्तम मत है। तो भगवान का निश्चित मत है, उत्तम मत है, इसका सम्मान करो है? तो आप कर्म बंधन से छूट जाओगे। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका लिखते हैं किंतु कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य व्यक्ति भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी लिखते हैं, 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये त्वेतदभ्य सोयन्तो नाम तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढान्तान विद्यनष्टान चेतसा। भगवान कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे मत की उपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जो भगवान के मत का आदर नहीं करते। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हमने चर्चा की आज के श्लोक पर। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा निश्चित मत है और उत्तम मत है। तो ये क्या चीज है जो भगवान बता रहे हैं कि मेरा निश्चित मत है और उत्तम मत है? कौन बताएगा? भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ दान और तपस्या के कर्म करने चाहिए। और फिर हमने कुछ और भी इसकी चर्चा की है। इसके अलावा और कौन से कर्म है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए? अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म जो है ना करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब उत्तम शब्द की जो व्याख्या है वो हमने दो प्रकार से की है। वो कौन कौन सी दो प्रकार की व्याख्या है उत्तम की? एक तो उत्तम शब्द बना है कैसे? उत माने ऊपर, तम माने अंधकार, अंधकार से ऊपर है भगवान का मत। और दूसरा उत्तम शब्द बना है कैसे? उत उत्तर और उत्तम, सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है भगवान का मत है। और भगवान का मत सबसे ऊंचा है, अंधकार से ऊपर है, है? और भौतिक संसार में जो लोगों के मत हैं वो अंधकार से भरे हुए हैं, है? इसका हमने कुछ उदाहरण दिया। वैज्ञानिकों का मत है कि संसार जो है ना, ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कैसे बने, एक विस्फोट हुआ। पहले एक बड़ा पिंड था, उस पिंड में विस्फोट हुआ तो सूर्य बन गए, चंद्रमा बन गए, पृथ्वी बन गए। अभी अपनी अपनी कक्षा में कैसे घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हाँ वो विस्फोट से अपने आप हो गया। तो एक विस्फोट, एक विस्फोट करो आप और एक मकान बन जाए, कैसा हो सकता है? इस प्रकार के जो मत है इनकी तुलना हमने की है अंधा व्यक्ति जो है ना, कई अंधे हैं, है ना, और कनॉट प्लेस का रास्ता बता रहे हैं अपने अपने मत से कि हमारे मत से कनॉट प्लेस का रास्ता ये है। अंधे हैं सब, है कि नहीं? भगवान का जो मत है वो है प्रकाश वाला, हाँ? कि आपकी सुरक्षा इधर से होगी, इधर से जाओ। लेकिन बाकी जो संसार के जो मत हैं तो वो सब जो है ना अंधा यथांधे रूप नियम माना, हाँ? एक अंधा जो है ना दूसरे अंधे को ले जा रहा है, हाँ? और खुद गिरता है गड्ढे में और अपने साथ वाले को भी गड्ढे में गिराता है, और क्या होगा, निश्चित रूप से गड्ढे में गिरेगा, है ना? तो ये हो रहा है, इसलिए हमें भगवान के मत का पालन करना चाहिए। और भगवान ने गीता के 30 अध्याय का 31वें श्लोक में क्या कहा है कि जो मेरे मत के अनुसार अगर पालन करेंगे, मेरे मत का पालन करेंगे, मेरे मत का आदर करेंगे तो क्या होगा, उनका कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान के मत का अगर आदर करोगे आप तो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। और जो भगवान के मत का आदर नहीं करता है, भगवान के मत का पालन नहीं करता है, तो उसको भगवान क्या कहते हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सब प्रकार के ज्ञान से भ्रष्ट है, उनकी चेतना नष्ट है, कि नहीं? इस तरह से भगवान बताते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि हमने कहा कि शास्त्र साधु आचार्य का मत हमें मानना चाहिए, तो साधु और आचार्य के मत में क्या अंतर है? शास्त्र जो है ये भी भगवान से आ रहे हैं, और जो साधु हैं वो भी शास्त्र के मत की बात बताते हैं, और जो आचार्य हैं वो उसमें भी जो है ना कुछ बातें हैं जो हमारे लिए बहुत व्यवहारिक हैं, हमारे लिए जो संभव है करने के लिए, वो बातें चुन करके बताते हैं। इस प्रकार से शास्त्र साधु आचार्य में अंतर कोई नहीं है, लेकिन अंतर यही है कि वो और ज्यादा निकट होते हैं। शास्त्र हैं उनमें बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें साधु कुछ चुनाव करते हैं, और उससे जो आचार्य हैं वो और भी आपको विशेष चुनाव करते हैं जो कि आपके ही लिए जो पालन करने के योग्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, ऋषि गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
जय 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 प्रभुपाद।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा।